आजकल हम चैरिटी, समाज सेवा, इन सब के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े डोनेशंस, बड़े फाउंडेशंस।
वही, सोशल मीडिया पर भी हैशटैग एक्टिविज्म वाले ट्रेंड्स चलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है।
हाँ, और बहुत शोर शराबे की।
लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं, वो एक एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाता है, शायद शायद ज्यादा शक्तिशाली।
बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्माचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की, और खास तौर पर उसके 13वें संकल्प की।
और ये संकल्प कहता है कि दुनिया को बदलने की असली ताकत पैसे या दिखावे में नहीं है।
बल्कि एक इंसान की सोच को बदलने में है।
बिल्कुल। और ये विचार आप देखिए आज के दौर में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है।
कैसे?
ये संकल्प हमें एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।
और वो क्या है?
समाज की असली महत्व क्या है? किसी को एक दिन के लिए खाना देना या उसे ऐसी सोच देना जिससे वो जिंदगी भर खुद कमाकर खा सके?
और दूसरों को भी खिला सके।
वाह, तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं।
हाँ, आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है कि क्या एक साधारण व्यक्ति, मतलब बिना किसी बड़ी दौलत या ताकत के, सिर्फ अपनी सोच और थोड़ी सी कोशिश से समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है?
हाँ
तो सबसे पहले वो संकल्प है क्या, जरा उसे आसान भाषा में समझते हैं।
हाँ
तो संकल्प कहता है, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए
ओके
अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे।
नियमित रूप से, कंसिस्टेंटली, ये की वर्ड है यहाँ।
जी
तो अगर इसे और सरल करें तो इसका मतलब है दुनिया में अच्छी सोच और अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए हम अपना थोड़ा समय, अपना असर,
इन्फ्लुएंस,
हाँ इन्फ्लुएंस, अपनी नॉलेज, अपनी मेहनत और अपना पैसा, ये सब नियमित रूप से, मतलब कंसिस्टेंटली लगाते रहेंगे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है।
समझ गए। तो चलिए इसके मूल विचार से शुरू करते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है कि अच्छी सोच या सत प्रवृत्तियां फैलाई जाएं?
इसका मूल विचार बहुत खूबसूरत है और प्रकृति के नियम पर आधारित है।
अच्छा,
देखिए, सत्संकल्प कहता है कि दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा काम वो अचानक से आसमान से नहीं टपकता। हर काम के पीछे एक विचार होता है, एक प्रवृत्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर पौधे के पीछे एक बीज होता है।
सही बात है।
बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता। तो वैसे ही बिना अच्छे विचारों के अच्छे काम यानी सत्कर्म पैदा ही नहीं हो सकते।
वाह, ये बीज और पौधे वाला उदाहरण, ये तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब हम जो समाज में अच्छी या बुरी फसल देखते हैं, वो दरअसल उन विचारों के बीज का नतीजा है जो कभी बोए गए थे।
बिल्कुल। ये संकल्प हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी है,
बल्कि
बल्कि उस बीज को बोने और उसे लगातार सींचने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।
अच्छा, सत्संकल्प में एक और बड़े कमाल की उपमा है इसी को समझाने के लिए,
क्या?
कि इंसान एक कुरूप लोहे की तरह है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये लोहा सोने में कैसे बदलता है?
हाँ, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बिंदु है।
यहां सद्विचारों को पारस पत्थर कहा गया है।
अच्छा,
पारस पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है।
वही तो सत्संकल्प कहता है कि इंसान भी अपनी मूल अवस्था में बस एक साधारण धातु की तरह है, मतलब जिसमें कोई खास मूल्य नहीं है। लेकिन जब उसे सद्विचारों का पारस छू जाता है तो वही साधारण इंसान,
सोना बन जाता है।
हाँ, वो मानवता के शिखर पर पहुंच सकता है।
तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं हुई, ये तो आज की सेल्फ हेल्प की दुनिया का भी कोर प्रिंसिपल है, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी।
बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये वही बात है जिसे ये सौभाग्य नहीं मिलता जो अच्छे विचारों के संपर्क में नहीं आता। वो इंसान अपनी कीमत, अपना असली पोटेंशियल समझ ही नहीं पाता।
अरन, कोई बाहरी कमी नहीं बल्कि अच्छे विचारों की कमी है।
जी, विचारों से दूर रह जाना ही असली कारण है।
तो अगर विचार ही लोहे को सोना बना सकते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है।
पूछिए।
हम हमेशा सोचते हैं कि समाज सेवा का मतलब है भूखे को खाना खिलाना या पैसे देना, पर इस लॉजिक के हिसाब से क्या सबसे बड़ी सेवा कुछ और है?
यही इस संकल्प का सबसे क्रांतिकारी विचार है।
क्या है वो?
इसके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी और स्थायी सेवा है किसी के मन में, किसी के हृदय में अच्छी सोच को, सत्प्रवृत्तियों को स्थापित कर देना।
पैसों या चीजों की मदद से भी बढ़कर?
हाँ, क्योंकि वस्तुएं या पैसों की मदद कुछ समय के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो किसी को आत्मनिर्भर नहीं बनाती।
सही बात है।
दूसरों की मदद पर निर्भर रहना न तो किसी के स्वाभिमान के लिए अच्छा है और न ही इससे किसी समस्या का कोई स्थायी हल निकलता है।
लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी कठोर नहीं लगती? मतलब अगर कोई बाढ़ में फंसा है या भूकंप में, तो उसे उस वक्त सद्विचारों की जरूरत है या छत की?
नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सत्संकल्प तात्कालिक मदद का विरोधी नहीं है।
अच्छा।
वो जरूरी है और मानवीय कर्तव्य भी है
जी,
लेकिन ये हमें बड़ी तस्वीर देखने को कहता है।
बड़ी तस्वीर मतलब
ये कि ज्यादातर व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं, चाहे वो गरीबी हो, अपराध हो,
आपसी झगड़े,
हाँ, उन सबकी जड़ में कुबुद्धि यानी गलत सोच ही होती है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करने के बजाय चोरी को आसान रास्ता मानता है तो आप उसे कितनी बार पैसे देंगे?
सही बात है।
असली समाधान तो उसकी सोच को बदलना है।
बिल्कुल।
तात्कालिक मदद एक पट्टी की तरह है जो घाव को बस ढक देती है।
और सद्विचारों को स्थापित करना,
वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करने वाली दवा की तरह है।
कह रहा है
जी।
लेकिन यहाँ एक और परत है। सत्संकल्प इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, उसके पीछे की नियत, जो भावना है, वो भी अच्छी होनी चाहिए।
हाँ।
वरना वो सब एक दिखावा है।
हाँ, और इसके लिए एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची तुलना की गई है।
क्या
कहा गया है कि बिना अच्छी भावना के किए गए अच्छे काम सिर्फ ढोंग है, पाखंड है। आज हम कई संस्थाओं को देखते हैं जो परमार्थ का दिखावा तो करती हैं, पर असल में उनका मकसद कुछ और ही होता है। सत्संकल्प में ऐसे लोगों के लिए उस सियार का उदाहरण दिया गया है जो शेर की खाल उड़कर घूमता है।
हाँ, ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई कंपनी सिर्फ पीआर के लिए पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए, लेकिन बाकी के 364 दिन उनकी फैक्ट्री नदी में प्रदूषण करती रहे।
बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण है।
बाहर से काम अच्छा दिख रहा है पर नियत सही नहीं है।
और ऐसे कामों से किसी का भला तो होता नहीं, उल्टा लोगों का असली समाज सेवा से भी भरोसा उठ जाता है।
हाँ, वो हर अच्छे काम को शक की नजर से देखने लगते हैं।
वही तो। सत्संकल्प कहता है कि जैसे प्राण के बिना शरीर, चाहे कितना भी सुंदर कपड़े पहन ले, वो है तो एक लाश ही, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। वैसे ही अच्छी भावना के बिना किए गए लोकहित के काम भलाई की जगह समाज में सिनिज्म और बुराई ही पैदा करते हैं।
ये एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में है जो आज हम सब महसूस करते हैं।
बताइए।
हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या असल दुनिया में भी नफरत और गलत जानकारी कितनी तेजी से फैलती है।
हाँ, बहुत तेजी से।
पर अच्छी बातें उतनी तेजी से नहीं फैलती, जबकि अच्छाई की बातें करने वाले लोग तो बहुत हैं। सत्संकल्प इस बारे में क्या कहता है?
इसका कारण भी सत्संकल्प में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और वो सुनकर शायद हम सबको थोड़ा आत्म मंथन करना पड़ेगा।
अच्छा।
वो कहता है कि बुराई फैलाने वाले लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और पक्के होते हैं।
मतलब कमिटेड।
हाँ, मन से, वचन से और कर्म से। वो जो मानते हैं उसे पूरे जुनून के साथ करते और फैलाते हैं। वहीं अच्छाई की बात करने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ बातूनी होते हैं, निष्ठावान नहीं।
ओ।
वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं।
तो मतलब जो अच्छी बातों के समर्थक हैं वो सिलेक्टिविस्ट हैं, है ना?
बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, सिलेक्टिविस्ट।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक कर दिया, एक कहानी शेयर कर दी और सोचा कि हमारा काम हो गया
जी।
जबकि गलत सोच वाले लोग पूरे जुनून और मेहनत से लगे रहते हैं
और इसी वजह से अच्छाई सिर्फ पुस्तकों और कथा प्रवचनों तक सिमट के रह जाती है,
लोगों के व्यवहार में नहीं उतर पाती।
लोग भी उसे सुनने सुनाने की चीज मान लेते हैं, अपनाने की नहीं।
तो इसी कमिटमेंट गैप की वजह से बुराई जंगल की आग की तरह फैलती है
और अच्छाई एक दिए की तरह टिमटिमाती रह जाती है।
तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हमें इस अच्छाई के दिए को एक मशाल में बदलना है तो सत्संकल्प सबसे उत्तम तरीका क्या बताता है?
इसके लिए ब्रह्मदान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है।
ब्रह्मदान, ये शब्द तो काफी भारी लगता है सुनने में।
हाँ, लगता है, पर इसका अर्थ बहुत सरल और गहरा है। ब्रह्मदान का अर्थ है ज्ञान का दान।
ज्ञान का दान?
पर यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो समझ, वो प्रेरणा, वो अच्छी भावना और वो निष्ठा है जो इंसान के नैतिक और चारित्रिक स्तर को ऊपर उठाती है।
तो ब्रह्मदान का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि किसी की सोच को ट्रांसफॉर्म करना है।
हाँ।
एक तरह से टीचिंग समवन टू फिश वाली बात का ये स्पिरिचुअल वर्जन हुआ।
हाँ, ये सबसे सही तरीका इसे समझने का। ये उस अमृत जल की तरह है जिससे अगर समाज के मुरझाए हुए मन को सींचा जाए तो वो फिर से हरा भरा हो सकता है।
वाह,
सत्संकल्प के अनुसार यही सच्चा परमार्थ है, और इसी महान काम को करने के लिए परमात्मा ने इंसान को बाकी जीवों से अलग कुछ विशेष क्षमताएं दी हैं।
वाह, ये सोच तो बहुत ऊंची है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग भी लगता है। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग अपनी 9 to 5 की नौकरी और घर की जिम्मेदारियों में ही उलझे हैं, वो इस महान काम को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें? Where do they even start?
और यही इस सत्संकल्प की सबसे खूबसूरत बात है।
क्या?
ये सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करके छोड़ नहीं देता, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक और करने योग्य रास्ता दिखाता है।
अच्छा,
ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके पास 5 दिव्य विभूतियां हैं, या कह लें कि 5 डिवाइन गिफ्ट्स हैं।
5? कौन कौन सी?
समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ यानी मेहनत, और धन।
ओके।
संकल्प कहता है कि हमें इन चीजों को सिर्फ अपनी जरूरतों पर ही पूरा खर्च नहीं कर देना है, बल्कि इनका एक छोटा सा हिस्सा, एक अंश, नियमित रूप से इस पुण्य प्रसार के लिए यानी अच्छी सोच को फैलाने के लिए लगाना है।
और इसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा मानने की बात कही गई है ना?
जी, जब हम किसी काम को जरूरी मान लेते हैं, जैसे खाना खाना या नौकरी पर जाना, तो उसके लिए समय और साधन निकाल ही लेते हैं। ठीक वैसे ही इसे भी अपने जीवन का एक मिशन मानना है।
और ऐसे नहीं कि हर किसी को 5 चीजें देनी है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके पास जो भी क्षमता है वो उसी का इस्तेमाल करे। कोई बहुत व्यस्त है पर उसके पास पैसा है तो वो धन दे सकता है।
और किसी के पास पैसा नहीं है पर वो अच्छा लिखता या बोलता है
तो वो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है। कोई रिटायर्ड व्यक्ति अपना समय दे सकता है।
क्या इसके लिए कोई ठोस एक्शनेबल सुझाव भी दिया गया है, जैसे कितना समय या कितना पैसा?
हाँ, एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक सुझाव दिया गया है जो हर कोई कर सकता है।
वो क्या है?
वो है, हर व्यक्ति कम से कम 1 घंटा समय रोज और महीने में 1 दिन की आय सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए लगाने का नियम बना लें।
1 घंटा रोज, मतलब आज के इस हसल कल्चर में जहां लोगों के पास परिवार के लिए समय नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है।
ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसे समझने की जरूरत है। यहाँ मतलब मैकेनिकल रूप से घड़ी देखकर 1 घंटा बैठना नहीं है, इसका मतलब है उस 1 घंटे के बराबर का एफर्ट लगाना।
अच्छा, मतलब?
हो सकता है आप 15 मिनट लगाकर किसी परेशान दोस्त से फोन पर बात करके उसे हिम्मत दें, ये भी ब्रह्मदान है।
ओके।
हो सकता है आप 20 मिनट लगाकर कुछ अच्छी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करें, या आप हफ्ते में 1 दिन निकालकर 2-3 घंटे किसी अच्छे काम में लगा दें। मुद्दा कंसिस्टेंसी का है।
और 1 दिन की आय का क्या?
वो भी महीने में 1 बार अपनी कमाई का लगभग 3% हिस्सा निकालने जैसा है। ये इतना बड़ा नहीं है कि किसी का बजट बिगड़ जाए, लेकिन अगर लाखों लोग ऐसा करने लगें तो उसकी कलेक्टिव पावर बहुत बड़ी होगी।
और इसमें अलग अलग लोग कैसे योगदान दे सकते हैं?
सत्संकल्प सुझाता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई अफसर, वो इसका खुलकर समर्थन करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले।
ठीक है।
जो ज्ञानवान हैं, जैसे शिक्षक या लेखक, वो अपना मार्गदर्शन दें, रास्ता दिखाएं, और जो धनवान हैं, वो इसके लिए जरूरी साधन जुटाएं।
इसमें झोला पुस्तकालय जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों का भी जिक्र है?
हाँ, मतलब आप एक झोले में कुछ अच्छी पुस्तकें रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और ज्ञान बांट सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंग या संस्था की जरूरत नहीं है।
तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सच्चा बदलाव बाहर से थोपी गई मदद से नहीं, बल्कि इंसान के अंदर से, उसकी सोच के विकास से आता है।
बिल्कुल।
ये संकल्प हमें सिर्फ दान देने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहा है, अपने समाज की वैचारिक सेहत को सुधारने की जिम्मेदारी।
बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है और अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक अवसर भी। और अंत में विचार करने के लिए एक बात ये है कि
क्या
सत्संकल्प ये इशारा करता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत किसी बहुत बड़ी चमचमाती परियोजना से नहीं होती, इसकी शुरुआत एक अच्छे विचार को चुपचाप, लगातार, बिना थके अपने अंदर सींचने और फिर उसे विनम्रता से दूसरों के साथ साझा करने से होती है।
तो क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे बैंक खाते या सोशल मीडिया फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि हमारे मन में मौजूद विचारों और उन्हें साझा करने की हमारी इच्छा में छिपी हो? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।